బంధన అనుకువా
शरीर के अंदर पांच कोष हैं
इन पांचों कोसों के पार जब आप जाओगे तो आपको परम तत्व का अनुभव होगा। ये पांच कोस, अन्नमय कोस, प्राणमय कोस, मनोमय कोस, विज्ञानमय कोस, आनंदमय कोस, और इन पांचों के अंदर जो परम तत्व है उसको साक्षी कहते हैं, उसको दृष्टा कहते हैं, उसको कूटस्थ कहते हैं। जिन लोगों ने धन धन बाबा ईश्वर सिंह जी राणे वाले का संगत किया होगा उनको इन चीजों को थोड़ा पता होगा, इन ब्रह्म ज्ञान का। ये पांच कोसों के अंदर वो है, वो तत्व, वो परम तत्व, जिसके अनुभव करने के बाद मनुष्य की सारी प्यास बुझ जाती है। ये पांच कोष हैं, पहला है अन्नमय कोष। ये जो बाहर शरीर दिखाई दे रहा है इसको अन्नमय कोष कहते हैं। ये अन्न से पैदा हुआ है, माता पिता अन्न खाते हैं, उससे रज बीज बनता है और उसके बाद उससे ये लोथड़ा बनता है, मांस का सारा कुछ, इसको अन्नमय कोष कहते हैं। यदि हम इस शरीर के अंदर उस प्रभु परमात्मा को झांकना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं, तो ये अन्नमय कोष को ट्रांसपेरेंट करना पड़ेगा। इसके लिए इस शरीर को उस प्रकार का आहार देना पड़ेगा जिससे ये शरीर शुद्ध हो। तीन प्रकार के भोजन होते हैं, तामसिक भोजन, राजसिक भोजन और सतोगुणी भोजन। मीट, शराब, बासी खाना, चार चार आठ आठ दिन का, ये तमोगुणी पदार्थ है। जब इस शरीर को तमोगुणी पदार्थ दोगे, इसको शराब दोगे, नशा दोगे, मीट दोगे, तो इसके अंदर आलस्य, नींद, मूर्ता, बेसमझी, हिंसा का भाव ऐसा जागेगा। कोई मीट खा के बोतल शराब पी करके ध्यान करने लगे प्रभु का, तो ध्यान क्या करेगा, उसको तो नींद आएगा, उसका शरीर तो कहेगा कि लंबे पड़ जाओ। इसलिए जो व्यक्ति चाहता है कि इस शरीर के अंदर उस परम तत्व का अनुभव करना है, उस व्यक्ति को तामसिक पदार्थ त्याग देना चाहिए। और राजसिक पदार्थ क्या है, ज्यादा मिर्च मसाले वाली चीजें, ज्यादा चटपटी चीजें, जिन चीजों को खाने से बुद्धि चंचल हो वो नहीं खाना। जो साधक है, जो गुरसिक है, जो जिज्ञासु है, जो परमात्मा के मार्ग पर एक कदम भी रखा है, उसको एक एक कदम बड़ी होश पूर्वक चलना है, बहुत होश पूर्वक। इस शरीर को पहला तो अल्प आहार, थोड़ा खाना है, और सात्विक आहार खाना है। सात्विक आहार में रोटी हो गया, हरी सब्जियां हो गई, फल हो गया, और बहुत आराम से खाना है, चित के खाना है। इस शरीर को सात्विक आहार देगा है, बासी खाना नहीं खाना बहुत दिनों का, वो भी तामसिक पदार्थों में आता है। पहला ये जो अन्नमय कोष है इसको स्वस्थ रखने के लिए सात्विक आहार लेना है, क्योंकि ये अन्न से ही बढ़ता है, अन्न से ही घटता है। इसको सही अन्न दोगे तो मन बुद्धि चित्त इंद्रियां शरीर सारा स्वस्थ रहेगा। इसको अन्न देना छोड़ दोगे इसके मांस खत्म हो जाएंगे, मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। दूसरा इसके अंदर है प्राणमय कोष, प्राण क्या है इसको समझना चाहिए, प्राण की साधना। जब आप चिंता में होते हैं, जब आप क्रोध में होते हैं, जब आपके चित्त में वासना होता है तो ये प्राण तेज हो जाता है, प्राण की गति तेज हो जाती है। काम क्रोध काया को गाले ज्यों कंचन सोहागा ढाले, उस वक्त प्राण तेज हो जाता है। प्राण तेज होने से मनुष्य जल्दी मर जाता है, क्योंकि हर एक इंसान प्राण जो है वो गिनती से लाया है, आयु गिनती से नहीं मिला है, प्राण गिनती से मिला है। इसीलिए योगी लोग साधना के द्वारा घंटे के बाद, आधे घंटे के बाद एक श्वास लेते हैं, उसकी आयु बढ़ जाती है। कहते हैं साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जब श्री हरमंदर साहिब का नींव रखा जा रहा था, तो उसके पहले जब सरोवर की खुदाई हो रही थी तो एक गुंबद सा निकला। गुरु महाराज कहते हैं कि बहुत धीरे धीरे इसको, इस गुंबद को हटाना है। गुंबद के अंदर देखा कि एक योगी बैठा है, एक योगी समाधि में बैठा है। उसके सिर के ऊपर कहते हैं गुरु महाराज जी ने मक्खन रखे, मक्खन पिघल गया। थोड़ा उसको समाधि से नीचे उतरा तो पूछता है कि ये कौन समा है, कौन युग है। गुरु महाराज कहते हैं कलयुग है। अच्छा, कलयुग आ गया है, योगी जी आप कब से बैठ गए। कहते हैं मैं सतयुग से बैठा हूं, लाखों साल पहले। अच्छा, कलयुग आ गया है, बहुत खुशी की बात है, अब तो हमें साहिब श्री गुरु रामदास जी महाराज का दर्शन होगा, और उनके दर्शन के बाद मैं इस शरीर को छोड़कर सचखंड चला जाऊंगा। मेरी एक मनोरथ था कि साहिब श्री गुरु रामदास जी का मैं दर्शन करूं। देखो, बहुत से ऐसे जीव जंतु हैं, डड्डू को देखो, आप 2 फीट जगह खोद के नीचे रख दो, मिट्टी पा दो, बरसात आएगा निकल आएगा 6 महीने के बाद। दूसरा है प्राणमय कोष, हमेशा आप कार से कहीं जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं, घर पर बैठे हैं, कोई काम नहीं है, आते जाते श्वासों को देखते रहो। जैसे ही आप आते जाते श्वासों को देखेंगे, मैं बहुत बड़ी साधना नहीं बता रहा हूं, बहुत छोटी सी, जैसे ही आते जाते श्वासों को देखेंगे श्वास की गति धीमी होगी। श्वास की गति धीमी होने से मन शांत होने लगेगा। 10 मिनट इस तरह करके फिर जपजी साहब का पाठ करो, सुखमनी करो, जो करना करो। बीज बोने से पहले पहले धरती को साफ करो, घास हटाओ, जो तो उसको चंगी तरह, फिर प्रभु का नाम रूपी बीज डालो। होता क्या है, हाथ में गुटका रखे हैं, पाठ कर रहे हैं, मन कहीं कहीं फिर रहा है, घंटा पाठ कर, ओहो मैं पता नहीं क्या पाठ किया, पता नहीं चला मुझे, सारा पाठ भी हो गया पता भी नहीं चला, मन कहां कहां फिर रहा है। पाठ करने के बाद, पाठ से पहले पाठ के बाद हमारे जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव चाहिए, कुछ नाम का रंग लगना चाहिए। सालों पाठ करने के बाद यदि हम वही के वही बैठे हैं, इसका मतलब कुछ भूल हो रहा है। प्राणमय कोष को ट्रांसपेरेंट करने के लिए पहली बात कि अधिक से अधिक आपको ऑक्सीजन की आवश्यकता है। जिस कमरे में आप सोते हैं, साधना करते हैं, भजन करते हैं, खिड़की थोड़ा खुला रखो, और जब आप बैठो ये भाव करके कि गुरु महाराज हाजर नाजर में, और पाठ करते वक्त बड़े भाव से करो। ये जो प्राणमय कोष है, प्राणमय कोष और अन्नमय कोष और मनोमय कोष, बड़े ध्यान से सुनना, 2 मिनट की बात। जैसे ये मन है, ये प्राण है, ये शरीर है। प्राण का स्वभाव है हिलना डुलना, प्राण हवा, हवा का स्वभाव है हिलना डुलना। ये प्राण मन से भी जुड़ा हुआ है, ये प्राण शरीर से भी जुड़ा हुआ है। ये प्राण हिलेगा तो मन भी हिलेगा, शरीर भी हिलेगा, क्योंकि सपोज मान लेते हैं ये शरीर प्राणमय कोष है, ये मनोमय कोष है, ये अन्नमय कोष है, तो ये हिल रहा है तो ये दोनों हिलेगा, मन भी हिलेगा, शरीर भी हिलेगा। यदि ये स्थिर है, ये शांत है, तो ये भी शांत होगा, ये भी शांत होगा। इस जुगत को ना जानने के कारण हम इसको कोशिश करते हैं ये मन ना जाए, मन ना जाए, ये गेंद की तरह, ये जितना गेंद को दबाते इतना ही उछलता है। कहते स्वामी जी जितना मर्जी रोकता हूं मन को, ये और ज्यादा जोर से भागता है। मैं क्या, यहीं पर संत की आवश्यकता होती है। जब सब कुछ अपने से ही हो जाना है, एक मामूली रोटी भी बनाना हो ना तो कुछ सीखना पड़ता है। एक बार मुझको कहते रोटी बनाने के लिए मुझको दिया आटा गुना, पानी एक गिलास डाल दिया, वो तो लेवी बन गया। वो पेड़े की बनना था, वो लेवी बन गया। मैं क्या भाई, चंगी तरह पहले सीखना पड़ता है। ये मन कैसे शांत हो, इसके लिए 2 चीजें। जब आप बैठो 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, घंटा, शरीर को हिलाओ मत। आप बैठोगे ना जब, तो 2 मिनट में मन कहेगा यहां खारिज हो रहा, थोड़ा सा हिला देते, क्या हर्ज है, दो मिनट में क्या, मन को करना ना, खारिज होगा, कट जाएगा, और क्या हो जाएगा, इससे ज्यादा क्या हो जाएगा, उसको कहो बस कोई नहीं, आधे घंटे के बाद जो भी कुछ करना है, शरीर जितना मर्जी तुमको कुछ कहे, थोड़ा सा पांव तो फेर ले ना, अभी नहीं, 15 मिनट तक तुमको नहीं कुछ करना। एक वस्तु की तरह शरीर को रख दो 15 मिनट, बस जब इसको रख देंगे ना, आधा काम आपका हो जाएगा। और उसके बाद, क्योंकि शरीर प्राण मन ये सब जुड़ा हुआ है आपस में, एक हिलेगा तो सारे हिलेंगे, शरीर हिलेगा, प्राण हिलेगा, मन हिलेगा। शरीर को स्थिर किया और फिर प्राण को देखने लग पड़ा। जब प्राण को देखने लगा, प्राण शांत होने लगा, फिर मन को कहते जा तू घूम फिर क्या, मन कहता मैं कहां जाऊं, मन जाते नहीं कहीं, मन को कहो ने थोड़ा सैर कर, कहता नहीं अब मेरा पंख काट दिया मैं कैसे सैर करूंगा, मन शांत हो जाए। मन का खुराक है विचार। एक चीज याद रखो, मन जीता है विचार से। इसको जितना ज्यादा विचार दोगे एक उतना ताकतवर होगा। मन को शांत सुखम बनाने के लिए इसको बहुत कम विचार दो, बहुत कम, बहुत कम। सुनने में किसी की बात को, जहां पर 2 बातें सुनने से काम चल जाए वहां 4 नहीं सुनना है। इसीलिए जो ब्रह्म ज्ञान का जिज्ञासु है वो अधिक से अधिक एकांत रहे, अधिक से अधिक मौन रहे, अधिक से अधिक ध्यान करे। एक एक बात का, जो बीत गई उम्र उसको गार्बेज में सुटो, लेकिन अब से एक एक दिन, एक एक मिनट इतना कीमती है जितना कोई प्राइम मिनिस्टर से भी ज्यादा कीमती अपने को समझो। क्यों? कि प्राइम मिनिस्टर को पैसे की धंधा कर रहा है, हमने तो उस परम तत्व को बैठाना है इस हृदय में, हमने वो काम करने जा रहे हैं। एकदम सावधान होके चेतना है तो चेत लो। एक एक मिनट आपका कीमती है। अब एक साधक की तरह है, एक योगी की तरह है, एक गुरसिख की तरह है। आप देखना जो पाठ, जो साधना, जो सिमरन आप 40 साल करने से कोई जीवन में क्रांति नहीं आई, आपको 1 महीना करने से क्रांति आएगा जीवन में। आपका 1 महीने में जीवन ही बदल जाएगा। मन ताकतवर होता है विचारों से। मन का खुराक है विचार। मन को वो विचार देना है जिससे मन अपने स्वरूप का चिंतन करे, संसार का चिंतन ना करे। मन का स्वभाव क्या है उसको जैसा विचार दोगे वो वैसा चिंतन करेगा। इस कान से वो चीज कभी नहीं सुननी है जिसके सुनने से मन विकार से भर जाए, निंदा चुगली इधर उधर की बातें, कुछ नहीं। सिर्फ शरीर को सुरक्षित रखने के लिए थोड़ा कृत करना है, कृत से 2 जो धन आवे, और उसके बाद बाकी समय अधिक से अधिक साधना में लगाना है। कोई जैसे बुलाया आप आना पार्टी में, आप उधर ठीक है जाए, हो सकता है आपके रिश्तेदार, आपके लोग थोड़े नाराज भी होने लगे, कोई बात नहीं, आपने बहुत खुश कर लिया तो क्या पदवी दे दिया, कोई तगमा तो नहीं दे दिया ना। एक साधना अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, मन को सूखम शांत करने के लिए गुरबाणी सुनो, गुरबाणी की कथा सुनो और ध्यान करो, बस। उसके बाद आता है विज्ञानमय कोष। पांच ज्ञान इंद्रियां और मन, इसको मनोमय कोष कहते हैं। पांच ज्ञान इंद्रियां और बुद्धि, उसको विज्ञानमय कोष कहते हैं। विज्ञानमय कोष क्या है? हमेशा बुद्धि को, मन को देखते रहना कि मन या बुद्धि कोई गलत तो नहीं विचार कर रहा है। पाप हमेशा होता है अचेत होने पर, इसीलिए जब किसी से कोई कत्ल करवाना हो, क्या बुरा काम करवाना हो, तो पहले उसको नशा शराब पिलाते हैं। शराब पिए हुआ बेहोश होगा, गलत काम करेगा। ये जो बेहोशी है ना, ये भी एक शराब ही है। पूर्ण होश, मन को देखते रहो हमेशा, दूसरे को नहीं देखना। दूसरे को देखने से दूसरे को सुधार तो नहीं सकते, अपने को सुधारने का जो कीमती समय है वो भी खो बैठोगे। अपने मन को देखना है, चलते फिरते सोते बैठते, वॉच योर माइंड, उसको वॉच करना है। जब आप अपने मन को वॉच करने लग जाएंगे, आप हैरान होंगे कि ना चाहता हुआ भी मन पता नहीं क्या क्या सारा दिन विचार करता। फिर जब रात को सोने लगो, हाथ पांव धो करके, गुरु को याद करके, गुरु को थैंक्स करके, हे साहेब गुरु नानक देव जी महाराज, आपने सारा दिन मुझे स्वस्थ रखा, आपकी कृपा से सब कुछ ठीक रखा, बस अब आपकी गोद में सो रहा हूं, आपकी गोद में। आप उठो, ऐसा समझ के चारों तरफ गुरु मेरा गुरु नानक देव जी महाराज हजर नजर। विज्ञान में कोष से ऊपर उठने का भाव यह है कि हमेशा होश में जीना। मैं संक्षेप में आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूं, क्योंकि जो कीर्तन गाए ना आदरणीय अवतार सिंह जी, तो मैं विषय ही चेंज हो गया। हरका बिलोवना बिलोवो मेरे भाई, ऐसे बिलोवो जैसे तत् ना जाए। तत् नाम ब्रह्म ज्ञान का है। पांचवा है आनंदमय कोष। जैसे एक लोहे का पिंजरा है, एक सोने का पिंजरा है। पिंजरा तो पिंजरा ही है ना। जब आदमी चार कोषों से उठता है तो आनंदमय कोष में फंस जाता है। आनंदमय कोष में क्या है कि मनुष्य आनंदित तो रहता है, लेकिन फिर भी चित्त में यह बना रहता है कि मैं आनंद का भोक्ता हूं, आनंद स्वरूप नहीं हूं। आनंद स्वरूप समझना और आनंद का भोक्ता समझना में फर्क है। सच्चाई यह है कि आत्मा आनंद स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, सत्य स्वरूप है, व्यापक है। आप आनंद के भोक्ता नहीं है। आनंदमय कोष में क्या होता है, क्योंकि आनंदमय कोष तक अविद्या होती है, और यू हैव टू गो बियॉन्ड आनंदमय कोष, क्योंकि ये पांचों जो है, ये पांचों शरीर है, अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष, आनंदमय कोष, ये तीन शरीरों के अंदर आ जाता है, सथूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, और इससे जब आप उठेंगे वो है साक्षी, वो है आत्मा, वो है आनंद स्वरूप, वो जिसको तत् कहते हैं। इसकी साधना जैसे जैसे आप अंदर जाओगे, प्रभु आप मार्ग देंगे। वो इतने कृपालु हैं, आपको सोचने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ लालटेन हाथ में चाहिए, ये जरूरी नहीं मान लेते हैं आप 20 किलोमीटर जाना चाह रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि 20 किलोमीटर तक लाइट रहे। आप दो कदम आगे रखोगे ना, वो लालटेन का प्रकाश दो कदम और आगे हो जाएगा। एक ज्ञान रूपी लालटेन हाथ में रहे, प्रभु के दर पर जाओ, ये प्रकाशित करता जाएगा, उसकी कृपा बरसती जाएगी। साहेब गुरु नानक देव जी महाराज की अमोलक वाणी आशा की वार, जिसकी कथा आप लड़ीवार श्रवण करते हो, आज साहेब गुरु नानक देव जी महाराज उपदेश कर देने, सलोक महला पहला, पुरखा बिरखा तीर्था तटा मेघा खेता दीपा लोआ मंडला खंडा वरवंडा अंडज जेरज उत्भुजा खाणी सेत जा सोमित जाने नानका सरा मेरा जनता। नानक जंत उपाय कै समाले सबना जिन करते करना किया चिंता भी करनी ताह सो करता चिंता करे जिन को पाया जग तिस जोहारी स्वस्थ तिस दीवान अभग नानक सचे नाम बिन क्या टिका क्या तग। नानक सचे नाम बिन क्या टिका क्या तग। गुरु महाराज का कहने का भाव ये है कि जब तक तुमने उस सच्चे परमात्मा का सिमरन नहीं किया, ध्यान नहीं किया, उसके साथ वृत्ति नहीं जोड़ा, तो क्या टीका, सिर में टीका लगा लिया, जनेऊ पा लिया, यानी जो बाहर के जितने कर्म कांड हैं, बड़ा ज्ञानी बन गया जो है, चिट्टे कपड़े पाके सारा, बाहर के जितने जो हैं ये सारा पाखंड है, यदि उस सच परमात्मा के साथ नहीं जुड़ा। यहां गुरु महाराज उपदेश कर देने, नानक सच्चे नाम बिन क्या टिका क्या तन, सो चिंता चिंता करे जिन उपाया जाए। गुरु महाराज उपदेश कर देने, पुरखा बिरखा तीर्था तटा मेघा खेता। पुरखा भाव ये है पुरख, ये हम लोग स्त्री पुरुष ये जो सारे, ये पुरखा, ये अनेक अनेक प्रकार के हैं। बिरखा वृक्ष, वृक्षों की आप देखो तो गिनती ही नहीं है, करोड़ों तरह के वृक्ष हैं, रंग रूप फूल सब कुछ जो है सो आश्चर्य है। पुरखा बिरखा तीर्था, तीर्था भी देखो 88 तीर्थ माने गए। हालांकि सच्चाई ये है कि तीर्थ वो है, उस जगह को तीर्थ कहते हैं जहां पर कोई गुरु सिख संत महापुरुष अधिक काल तक भजन किए, उस जगह को तीर्थ कहते हैं। ये जो सत्संग हॉल है ये भी तीर्थ है, श्री हरमंदर साहिब तीर्थ है, श्री तरन तारण साहिब, श्री गोविंदवाल साहिब, हजूर साहिब, ये सारे तीर्थ हैं, हरिद्वार तीर्थ है, बनारस तीर्थ है, प्रयागराज तीर्थ है, क्योंकि वहां पर बहुत समय से संत महापुरुष भजन सिमरन। साहिब श्री गुरु अमरदास जी 22 बार जो हरिद्वार जाते रहे, यूं ही नहीं जाते रहे, तीर्थों में भजन करने से अधिक लाभ होता है। आप जपजी साहब का एक पाठ आप घर में करो, एक पाठ यहां करो, फर्क होगा। यही एक पाठ हरमंदर साहब में जाके करो, उसके फल का फर्क होगा, क्योंकि श्री हरमंदर साहेब विच लगभग 20 घंटे 22 घंटे कीर्तन होता है, प्रभु का जस होता है। तो वहां पर जो परमाणु है ना, वो पूरा का पूरा जो है एक अलौकिक आभा मंडल है वहां पर। तो उस घेरे में जो आ जाता है ना, उसकी सोच ही बदल जाती है, वो विस्मात में चला जाता है। लेकिन तीरथ को तीरथ समझना है। हमारे एक संत थे, जब हरिद्वार से आते थे ना अमृतसर साहेब, तो ट्रेन से उन्होंने उतरना तो पांव नहीं रखना, पहले ट्रेन पर बैठे बैठे ही सिर को स्टेशन के जो थड़ा है उसमें लगाना, फिर पांव रखना। ये भाव, ये पिकनिक स्पॉट समझ के नहीं जाना तीर्थों में, उस भाव से जाना है कि यहां पर सत्संग सुनेंगे, यहां भजन करेंगे, यहां साधना करेंगे, फिर तो तीर्थ फल देगा। लेकिन तीर्थ को आप पिकनिक समझ के जाओगे तो तीर्थ फल नहीं देगा। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी दिन तैसी। जैसी भावना होगी वैसा आपको फल मिलेगा। यहां पर गुरु महाराज उपदेश कर देने, पुरखा बिरखा तीर्था तटा मेघा खेता, तटा जो नदियों के तट हैं, मेघा मेघ भी कितने हैं, हजारों हैं, खेता और खेत भी बहुत हैं, दीपा लोमा मंडला खंडा वरभंडा, और कई एक द्वीप हैं, एक द्वीप नहीं है, कोई नौ खंड कहता है, कोई ग्यारह कहता है, अलग अलग शास्त्र। दीपा द्वीप, लोमा लोक, मंडला ये जो मंडल है, अलग अलग मंडल है। आप आश्चर्य होंगे, ऐसे ऐसे तारे हैं जो छोटे दिखते हैं ना, वो सूर्य से भी बड़े हैं। ऐसे भी तारे हैं, जब ये पृथ्वी स्थापित हुआ तब से उसका प्रकाश चला, अभी तक इस धरती पर नहीं आया है। जब मैं पढ़ा ग्रंथ को आश्चर्य हो गया, जब से पृथ्वी बना है, पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, और ऐसे ऐसे तारे इतने दूर हैं, उसका प्रकाश चला है, अभी तक इस धरती पर नहीं पहुंचा, और एक सेकेंड में 186,000 किलोमीटर प्रकाश की गति है। बहुत आश्चर्य है। ये थाली जैसा दिखता है ना, ये सूर्य इस पृथ्वी से 60,000 गुना बड़ा है, 60,000 गुना बड़ा ये सूरज। 60,000 पृथ्वी को जोड़ दो तो एक सूरज बनता है, और ऐसे सूरज 2 करोड़ सूरज का वैज्ञानिकों ने पता लगा चुका है, 2 करोड़ कहते अभी और है। गुरु महाराज तो पहले कह दी, पाताल पाताल लाख आकाश, ये सब कुछ अनंत है। प्रभु अनंत, और प्रभु की जो प्रकृति है वो भी अनंत है। गुरु महाराज यहां उपदेश कर देने, दीपा लोमा मंडला खंडा, एक जो 9 खंड है उसमें एक भारत खंड है, अलग अलग खंड है, वर भंडार और ये ब्रह्मांड। इस ब्रह्मांड में कितने सूरज, कितने धरती, कितने चंद्रमा, कितने सब कुछ आ जाते हैं, कॉस्मिक जिसको कहते हैं। अंडज जेरज उत्भुजा खाणी सेतजा, और 4 खानियां हैं अंडज, जो अंडे से पैदा होते हैं। बहुत सी ऐसी चीजें जो आप देखते हैं, कीड़े मकोड़े सब 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 अंडे से पैदा होते हैं। करोड़ों जीव जंतु अंडे से पैदा होते हैं, पंछी वगैरह ये सब अंडे से पैदा होते हैं। एक योनि है अंडज, जेरज जो जेर से पैदा होता है, जब वो पैदा होता है ना तो उसके शरीर में जेर लिपटा होता है, झिल्ली जैसा, जैसे मनुष्य हो गया, और चौपाया पशु जैसे घोड़ी हो गया चाहे और ये आपके गौ वगैरह, ये सारे जेरज जोली भी चाहते हैं। उद्भुज जो जमीन को फाड़ कर पैदा होता है, ये जितने दरख्त वगैरह हैं, वृक्ष वगैरह, ये भी जोनी बीच है। हम लोग किसी वक्त दरख्त भी रह चुके हैं, कभी एरंड भी रहे हैं, कभी चंदन भी रहे। आप जाओ ना सैर करने के लिए तो एक एक घास को देखो और ये सोच के देखो ऐसे भी हम रहे हैं। किसी टाइम में आम के दरख्त भी रहे हैं, पीपल के भी दरख्त रहे हैं, ए पौधा भी रहे, ए पौधा रहे। इस तरह कर कर के विचार के तुम विस्मार में चले जाओ। फिर कीड़ों को देखो, एक कीड़ा भी किसी जूनी में हमने रहा, कभी ऐसा रहा है, कभी ऐसा रहा है, ये साल घूम फिर करके ये मिला है। लख 84 जून विच मानुक जन्म दुर्लभ हो पाया, ये दुर्लभ शरीर मिला है। लेकिन इस दुर्लभ शरीर को म्युनिसिपल कमेटी की पानी के तरह टोटी ना खोल दो बेहतर है। भारत में जाओ ना तो लोग जो म्युनिसिपल कमेटी का पानी होता है ना, एक गिलास पानी लिया और उसको बंद नहीं करेंगे, ऐसे छोड़ देंगे। हम अपने जीवन को यूं ही गंवा रहे हैं। यहां पर गुरु महाराज उपदेश, अंडज जेरज स्वेदज उद्भुज, स्वेदज जो पसीने से पैदा होता है, जैसे जू वगैरह, खटमल, ये सारे जो है सो मेनी इंसेक्ट्स, वो जो है पसीने से पैदा होते हैं, जो स्किन में इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है। एक चार जो है सो खानियां है, इस चार खानियां में सारे जीव जंतु आ जाते हैं सारे। यहां गुरु महाराज उपदेश करते ने, अंडज जेरज उत्भुजा खानी सेत जा सोमित जाने नानका सरा मेरा जनता। सोमित जाने नानका, सरा समंदर, मेरा पहाड़ जैसे सुमेरु पर्वत आदि, सरा मेरा जनता और जितने जीव जंतु हैं, इस सब की जो मित अर्थात उसके मन की जो बात है, उसकी सारी हालत को, सारे जीवन को वो वाहेगुरु जानता है। सो मित जाने नानका, वो सब कुछ जानता है, सबका बैलेंस शीट उसके पास है, क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे वो सब कुछ जान रहा है। सोमित जाने नानका सरा मेरा जनता, नानक जंत उपाय कै समाले सबना, जिन करते करना किया चिंता वे करनी था। नानक जंत उपाय के समाले सबना, ओ परमात्मा उत्पन्न करके सबका परवरिश करता है। चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए, सैन पत्थर में जंत उपाय ताका रिजक आगे कर धरिया। मनुष्य सोचता है हम किसी को खिलाते हैं, कोई किसी का खिलाता नहीं, हर एक व्यक्ति अपना भाग्य खाता है। एक चीज याद रखो, कोई किसी का नहीं खाता, कोई किसी को खिला ही नहीं सकता और कोई किसी का नहीं खा सकता। ये सब जो खा रहा है अपने ही किस्मत से, जो तुमने रखे हुए ना भगवान के पास बैलेंस में, भगवान तुमको फिर निकाल निकाल के दे देते हैं। तुम अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखा देते हैं, वो देख लेते हैं, हाँ भाई जो ऐसे इसका ऐसा ऐसा दे देते, जैसा जैसा है, जैसा जैसा तुमको मिल रहा है ना। एक मोटी सी भी याद रखो, जहां जहां से सुख मिल रहा है तुम्हारे ही शुभ कर्मों का फल है, जहां जहां से दुख मिल रहा है तुम्हारे ही बुरे कर्मों का फल है। कीता पाइये अपना सघाल बुरी क्यों खालिए, सैल पत्थर में जंत उपाय ताका रिजक आगे कर धरिया। एक बार मोहम्मद साहेब भगवान को बोले, भगवान आप बहुत बिजी रहते हो, थोड़ा काम मुझे भी दे दो, मैं हेल्प करूंगा। भगवान बोले कि क्या हेल्प करना चाहते तुम? तो जो रिजेक्ट देते हो ना सारियानु, एक काम मुझे दे दो। भगवान बोले वाहेगुरु मोहम्मद साहेब, तुमको जो पैगाम पहुंचाने के लिए दिया है ना वही काफी है, ओवरलोड ना लो तुम। नहीं नहीं थोड़ा हेल्प करना चाहता हूं मैं। कहते हैं चलो ऐसा करो, 24 घंटे तक तुम पहले लोगों को रिजेक्ट दो। बहुत रिक्वेस्ट किया। जब कोई व्यक्ति ट्रेनिंग पीरियड में होने तो मालिक को अच्छा करके दिखाना चाहता है ताकि मालिक परमानेंट कर दे मुझे। मोहम्मद साहेब सारियानो उठा उठा करके, भाई उठो मैं सेटिस्फाइड हूं, कोई बात नहीं, एक बुर्की खा लो। उठा उठा के सारियानो खिला सबको। एक आदमी जिसने बड़ा घोर पाप किया था, जिसका वर्णन भी कदम ठीक नहीं, उसको नहीं दिया। उसको तो देना क्या था, उसको तो कहा तुमको ऐसा सजा दूंगा कि मत, नहीं दिया। सुबह वाहेगुरु के पास आया मोहम्मद साहब, हाँ जी सारियानो रिजेक्ट दिया। महाराज आप तो अंतर्जामी देख ही लो। वाहेगुरु देखे, अरे भाई सबको दिया है, वाह, तो एक को नहीं दिया। महाराज उसके बारे में ना पूछो, वो तो बड़ा पापी घोर पापी है, उसको तो वहां मांगना चाहिए जहां पानी ना मिले, और रिजेक्ट देने की तो दूर की बात। भगवान बोले वाहेगुरु के देखो, जब मैं रिजेक्ट देता हूं और आज तक देता आ रहा हूं, तो मैंने किसी के अवगुण को देखा ही नहीं है। मैं कभी किसी के अवगुण को देखा ही नहीं देते वक्त। मेरा तो स्वभाव है देनदा दे लेंदे थक पाए। देने वाले के हजारों हाथ हैं, लेने वाले के तो थोड़े हाथ। दत्ता दाता एक है सबको देवनहार, देंदे तोट न आवई अगनत भरे भंडार। यहां पर गुरु महाराज उपदेश कर देने, नानक जंत उपाय कै समाले सब नाह, जिन करते करना किया चिंता भे करनी था। एक चीज याद रखो, जैसे एक महीने के बालक को मां मोमेंट टू मोमेंट याद करती है ना, ऐसे वाहेगुरु सारियां याद कर, सबको याद करता, सबका संभाल लगता है। अफसोस अपनी अज्ञानता के कारण कल क्या होगा, भय में जीते, कल क्या होगा, नौकरी छूट जाएगी, बच्चे नहीं पूछेंगे, पति नहीं पूछेगा, पत्नी नहीं पूछेगी। इसका मतलब क्या है कि आपको उसके ऊपर भरोसा नहीं है। इतना भरोसा हो कि हर हाल में वो हमारा अंग संग है। जब वो अंग संग है तो फिर हमें क्या चिंता करना। शैल पत्थर में जंत उपाय ताका आगे, ताका रिजेक्ट आगे करता गया। मोहम्मद साहब ने कहा कि भगवान आप सबको रिजेक्ट देते हो? हाँ जी सबको देते हैं। मोहम्मद साहब दूसरे कमरे गए, अपनी टोपी जो है निकाल लिया, एक कीड़ी को ना टोपी में रख के सिर पर रख के आगे वाहेगुरु को, वाहेगुरु जी सबको देंगे रिजेक्ट? हाँ जी सारिया ने देते, टोपी उतार, एक कीड़ी को तो दिया नहीं आपने को रिजेक्ट। वाहेगुरु बोले मोहम्मद साहब गौर से देखो, गौर से देखो। मोहम्मद साहब गौर से देखे, उस कीड़ी के मुंह में एक चीनी का दाना था, चरना था डिग पे, उस कीड़ी के जो छोटी कीड़ी है ना उसके मुंह में एक चीनी का खंड का दाना था। ये तो वही कर सकता है। हम देते हैं थोड़ा, वो भी उसका दिया हुआ जताते जाना, वो देता देता है वो जताता नहीं है, ये फर्क है। ये गुरु महाराज वहां उपदेश कर देने, नानक जंत उपाय कह समाले सबना, जिन करते करना किया चिंता भे करनी ताह, सो करता चिंता करे जिन उपाया जग, तिस जो हारि स्वस्थ तिस दीवान अभग, नानक सचे नाम बिन क्या टिका क्या टिक। नानक सचे नाम बिन, यदि उस प्रभु परमात्मा को हाजर साथ नाजर समझ के यदि भक्ति नहीं किया, सिमरन नहीं किया, तो बाहर के जितने पाखंड हैं वो बेकार है। इसका भाव ये है, दो चीजें आज गुरु महाराज दो चीजों को उपदेश कर रहे हैं। एक, चिंता नहीं करनी है, क्योंकि वो हमारा श्वास श्वास हमारा परवरिश कर रहा है। दूसरा, उस प्रभु को थैंक्स करना है, याद करना है जिसने सब कुछ दिया है, जिससे क्या होगा, लोक सुखे परलोक सुहेले, नानक हर प्रभु आपे मेले, भूल चुक दी खिमा, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की।